नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रमुख वित्तीय नियमों में बदलाव सहित कई सुधार लागू हो जाएंगे। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज आयकर अधिनियम 2025 ने 6 दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ले लिया है। इसे पुराने प्रावधानों को हटाकर जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करके और करदाताओं के लिए अनुपालन को अधिक सरल बनाकर कर प्रणाली को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आज से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2-कारक प्रमाणीकरण के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्ट्रैक वार्षिक पास का संशोधित शुल्क भी आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या उसे अपडेट करने के संशोधित नियम भी आज से प्रभावी हो गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ये स्वगणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची तैयार की जाएगी तथा आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। भवनों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देशभर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणनाकर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली संबंधी रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने, शोध को प्रोत्साहित करने और चिकित्सकों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे ये कॉलेज भी संबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉलेज परिसर में निर्मित नए शैक्षणिक खंड का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा साइंटिफिक जर्नल का विमोचन भी किया गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा अंबाला छावनी में 12 क्रॉस रोड पर स्थापित की जाएगी। प्रतिमा स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि अंबाला सदर नगर परिषद को जारी की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 134A के अंतर्गत आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर दी है। विभाग द्वारा कुल 31 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के 7 जिलों अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकुला और रोहतक के निजी विद्यालयों को वित्तीय प्रतिपूर्ति होगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।